लेकर चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बह दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। इस किनारे बह दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। ज्ञान योग का लेके सहारा हमको चलते जाना है,
हमको चलते जाना है।
आंधी आए तूफान आए कभी नहीं घबराना है,
घबराना है।
पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, हो पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार।
वो साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी वो साथी संभल के चल तू।
पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार, ओ साथी रे,
ओ साथी संभल के चल, ओ साथी संभल के चल।
ओम शांति। दो भूवैज्ञानिक किसी हेलीकॉप्टर से किसी जंगल में पहुंचे। वो दोनों हमेशा ऐसे चीजों की खोज करते थे जो कि धरती पर पाई जाती थी, जमीन, मिट्टी, पत्थर, इस तरह के। और इस बार वो ऐसे छह बड़े बड़े पत्थर ले लेते हैं जो कि बहुत अद्भुत है, विलक्षण है। और वो पत्थर उनको ले जाना है रिसर्च करने के लिए। तो वो सारे पत्थरों को, छह पत्थरों को इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़े बड़े, और उस हेलीकॉप्टर में डालने की कोशिश करते हैं। तो हेलीकॉप्टर का एक पायलट होता है, वो कहता है कि इतने पत्थर हेलीकॉप्टर में नहीं आएंगे, कृपया करो कि दो कम कर दो। वो कहते हैं ऐसे कैसे नहीं आएंगे, हमको बहुत जरूरी है रिसर्च के लिए, और इतनी मुश्किल से हमने ये पाए हैं, आपको रखना ही पड़ेगा। और पिछली बार हमने हेलीकॉप्टर में ऐसे ही छह पत्थर लेके गए थे, और ये पायलट तो नया था। वो कहते हैं अच्छा, पिछली बार गए थे। वो कहते हैं फिर तो ठीक है, चलो रख दो। और वो छह के छह बड़े बड़े पत्थर उस हेलीकॉप्टर में रख देते हैं। और जैसे ही हेलीकॉप्टर चालू होता है और ऊपर उड़ने लगता है, वो धीरे धीरे भार सहन नहीं करता है और उस पायलट को क्रैश लैंडिंग करना पड़ता है अचानक। और जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग करता है तो ये तीनों लोग झड़ जाते हैं, ऊपर से गिरते हैं और तीनों झाड़ से लटक जाते हैं। पहला जो भूवैज्ञानिक होता है वो कहता है दूसरे से, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है इस स्थान को हमने कभी देखा है इसके पहले भी, और ये झाड़। तो वो दूसरा कहता है लास्ट टाइम जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तब भी हम इसी झाड़ पर लटके थे, लास्ट टाइम जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो ये वही झाड़ है जिसमें हम लटके थे। क्या करके जा रहे थे ये दोनों? पिछली बार भी ऐसा ही क्रैश हुआ था, इस बार भी क्रैश हुआ, क्यों? भार ज्यादा था। क्यों? बोझ ज्यादा था, और पिछली बार भी बोझ ज्यादा था, और पिछली बार जब बोझ ज्यादा था तो गिरे थे, और इस बार भी फिर से बोझ ज्यादा रखा और फिर से गिरे, और जब जब बोझ ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो गिरते ही रहेंगे। कुमार जीवन अर्थात निर्बोझ, कुमार जीवन अर्थात स्वतंत्र, कुमार जीवन अर्थात निर्बंधन, बोझ नहीं। और बोझ यदि लिया था और गिरे थे तो उससे क्या करना है, सीखना है, नहीं तो हमारी गति भी उन दोनों जैसी ही होगी। तो लास्ट संडे की जो मुरली थी, 5 ग्रुप थे कुमारों के, आज हम दूसरे ग्रुप की चर्चा करेंगे। क्या कहा था इसमें बाबा ने, याद है क्या कहा था? दूसरा ग्रुप कुमारों से मुलाकात, सबसे पहली बात कुमार अर्थात शक्तिशाली, जितना स्वयं को ऊपर उठाना चाहो उठा सकते हो, और जितना स्वयं को नीचे गिराना चाहो वो भी गिर सकते हो। ऊपर उठना या नीचे गिरना तुम्हारे हाथ में है। फर्स्ट ग्रुप में कहा था कुमार अर्थात श्रेष्ठ कुमार, कुमार अर्थात श्रेष्ठ तरफ शक्तियां लगाने वाले, मन की शक्ति और तन की शक्ति, अपनी शक्तियों को विनाशकारी कार्य की तरफ न लगाने वाले, यह है ब्रह्मा कुमार। यहां बाबा कह रहे हैं कुमार अर्थात शक्तिशाली, पावरफुल, स्ट्रांग, हमारे हाथ में है। दिनचर्या की शुरुआत कैसे हो रही है, क्या हम कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हो रही है, किन संकल्पों से हो रही है, किन क्रियाओं से हो रही है, किन शब्दों से हो रही है, किस विचारधारा से हो रही है, उस आधार पर सारी दिनचर्या होगी। दिन भर का सब कुछ निर्भर करेगा इस पर। तो सबसे पहली चीज जो बाबा ने यहां कही, 6 बातें कही है इस ग्रुप को। सबसे पहला कुमार अर्थात शक्तिशाली, गिराना है तो गिराओ, चढ़ाना है स्वयं को, ऊपर उठाना है तो उठाओ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक व्यर्थ संकल्प सुबह वो सारे दिन भर चलेगा, एक नेगेटिव संकल्प सुबह सारे दिन भर चलेगा, एक विकारी संकल्प खींचते रहेगा, एक मोह का संकल्प, एक अटैचमेंट का संकल्प सारे दिन भर चलते रहेगा, क्योंकि सुबह वो आया है, और सुबह जो आता है उसका प्रभाव सारी दिनचर्या पर रहता है। तो कुमार अर्थात शक्तिशाली, ये निर्णय हमारे हाथ में है। 2 मार्ग है, 2 ऑप्शंस, 2 विकल्प उठते ही आज का सारा दिन मुझे स्वयं को ऊपर रखना है या गिरने देना है। देहभान की वो सारी बातें जो कल की थी या परसों की थी या अब तक कर रहे थे या जो बीच बीच में आ रही थी, आज उन्हीं को आने देना है या फिर उनसे मुक्त होने का संकल्प करना है। अभी अभी जो अव्यक्त वाणी चली शांतिवन में, क्या कहा उसमें बाबा ने, दृढ़ संकल्प अर्थात नहीं अर्थात नहीं, नो मीन्स नो, बस संकल्प कर लिया नहीं, जाना ही नहीं है उस मार्ग पे, नहीं नो, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इम्प्यूरिटी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमको जाना ही नहीं है, किसी भी व्यर्थ बात में, किसी भी तरह की फैमिलियरिटीज में, किसी भी तरह की घनिष्ठता में, किसी भी तरह की संसारिकता में, मैत्री में, जो हमको गिरा दे, अटैचमेंट उत्पन्न कर दे हृदय में, हलचल उत्पन्न हो भावनाओं में, उन सब बातों में जाना ही नहीं है। तो यह सबसे पहली बात है कुमार अर्थात शक्ति, पावर, अतुलित बलधामा हमारा यादगार है। शक्ति है जिसके पास, बहादुर है। दूसरी बात, कुमार अर्थात जो बाप के बन गए, बाबा के बन गए। बाप के बन गए अर्थात किन किन बातों से छूट गए? बाबा ने कहा टिकट के पैसे नहीं निकालने पड़े। यहां अभी बहुत सारी बहनें और माताएं बैठी है, कुमार भी बहुत है, पर आज समझना है कि हम सभी कुमार है, ठीक है? बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। तो किस किस से बच गए आशीष भाई? टिकट के पैसे। और किससे बच गए? सामान उठाने से। और किससे बच गए? खाना। यहां तुमको बाप खिलाता है, यहां बाप खाता भी नहीं है, केवल वासना लेता है, और ये भोजन शक्तिशाली हो जाता है। तो वो सब झंझटों से तुम छूट गए हो। सूटकेस, दो सूटकेस, पहले एक थी अपनी, एक अभी दो। तो कुमार अर्थात एक बाप के बन गए, एक बाप के बंधन में बंध जाना अर्थात बाकी सभी बंधनों से छूट जाना, ये बाप के बनने का फायदा है। उस उल्टी सीढ़ी में जाना ही नहीं है, उस बंधन में फंसना ही नहीं है। उधर गए कि डाउनफॉल चालू, उधर गए कि कर्म बंधन चालू। इसलिए जो उधर गए नहीं है, उधर जाने का अभी संकल्प चालू है मन में, प्लानिंग योजना कर रहे हैं कि जाऊं क्या। तो प्लानिंग बना रहे हैं, उनके लिए ये सावधानी है बाबा की तरफ से कि तुमको जाना ही नहीं है, उधर उस बंधन में फंसना ही नहीं है। क्योंकि वहां एक बार बंधन, एक बंधन नहीं है, वो असंख्य बंधन है। बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन। वो स्त्रियों के लिए कहते हैं, जब वो पिता के घर रहती है तो रानी रहती है, जब पति के घर आती है तो लक्ष्मी बनकर आती है, और फिर बाद में बाई बन जाती है, और फिर रानी लक्ष्मी बाई बनकर बिना तलवार के जीवन भर अंग्रेज समझकर पति से युद्ध के होता है, और पति बेचारा फिर अंग्रेजी लेना चालू कर देता है। तो उधर जाना ही नहीं है उस मार्ग पर। तो कुमार अर्थात बाप के बन गए हैं, और किसी के बनने की आवश्यकता नहीं है, संसार के किसी भी बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बंधन है, बोझ है, जंजाल है, मुसीबत है, झंझट है, इनसे भरे हुए है सब कुछ। इसलिए दूर ही रहना ठीक है। और जो चले गए उनका क्या? अब उनका क्या किया जाए? उनका क्या किया जाए सुशील भाई? जो चले गए उनका कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, आप नहीं, वो खुद क्या करे? वो भी उस बंधन में भी रहते हुए ज्ञान तलवार को बीच में लाना है। दो व्यक्तियों के बीच ज्ञान तलवार चाहिए, नहीं तो अगर ज्ञान कटार नहीं तो काम कटार चलेगी। परमात्मा प्रेम चाहिए। लक्ष्य रखना है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा के हृदय में परमात्मा प्रेम भर दे। यदि मेरा किसी आत्मा से मोह है तो क्या मैं उस आत्मा का अकल्याण कर रहा हूं? स्त्री पुरुष की बात छोड़ दो, ऐसे ही मेरे मोह के वाइब्रेशंस उस तक तो जाएंगे ना। यदि मेरा किसी भी आत्मा में मोह है संसार की, तो उस तक मेरे वाइब्रेशंस जाएंगे। और यदि मेरे मोह के वाइब्रेशंस उस तक जाएंगे तो क्या वो अशरीरी हो पाएगा? और यदि वो ब्राह्मण है तो बाबा से उसका अटूट प्रेम हो पाएगा? शायद नहीं। एक है इंडिपेंडेंट पतित बनना, एक है किसी को लेकर पतित बनना। पाप किस में जाता है? दूसरे को लेकर पतित बन रहे हैं। एक है मैं अकेला, एक है दूसरों को इन्वॉल्व कर रहा हूं विकार में। वो विकार में इन्वॉल्व करना तीन रीति से होगा। संकल्प से टच करना, आंखों से टच करना और हाथों से स्पर्श करना। तीन क्रियाएं हैं, एक संकल्प, एक आंख और एक हाथ। तीनों ही दूसरी आत्मा को विकारी बना रहे हैं, या फिर उसमें मोह उत्पन्न हो रहा है, या फिर उसमें देहभान उत्पन्न हो रहा है। मेरे मोह के संकल्प उस तक पहुंच रहे हैं, उस आत्मा तक। तो क्या वो ज्ञानी आत्मा अशरीरी होकर भगवान के प्यार में डूब सकेगी? क्या मेरे मोह उसके लिए बाधा नहीं है? इसलिए कुमार अर्थात जो बाप के बन गए, उस झंझट में, उस चक्कर में जाना ही नहीं है। और जो जा गए, चले गए हैं, बीच में क्या तलवार हो? परंतु वो ज्ञान तलवार रहने के बाद में भी वो सब कुछ सहन करना पड़ेगा जो वहां होता है। एक पति 10 साल की सजा काट के वापस घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, अब तक कहां थे? रिहाई तो 2 घंटा पहले हो गई है। किधर थे? संशय का कोई इलाज है क्या? शायद नहीं। स्त्री और पुरुष के मन उपजाऊ भूमि है संशय के बीज के लिए। एक बार पड़ गया फिर मुश्किल है। तो दूसरा क्या कहा बाबा ने? बाप का बनना। तीसरा, संसार के रीति से भी इसे अच्छा समझा जाता है, झंझट नहीं। क्या कहा? कुमार अर्थात कुमार रहना संसार की रीति से भी अच्छा समझा जाता है, झंझट नहीं है उसमें कोई। क्योंकि आत्मा के साथ साथ शरीर का भी कर्म बंधन चालू हो जाता है संसार के सारे बंधनों में, ये शादी विवाह ये सब बातों में। इसके पहले भी कहा था, एक शिकारी जंगल में भटक गया, 3 दिन तक उसे कोई भी नहीं मिला, न स्त्री न पुरुष न परिंदा न पशु न पक्षी, अकेला भटकता रहा भटकता रहा भटकता रहा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अचानक एक दिन एक झाड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा, वो भी एक शिकारी था, वो भी भटका हुआ था 3-4 दिन से, उसको भी कोई नहीं मिला था। और दोनों जैसे ही देखते एक दूसरे को एकदम से गले मिलते और बहुत खुश हो जाते हैं कि कोई तो मिला। पर इसके बाद अब दोनों साथ साथ भटक रहे हैं। पहले अकेले अकेले भटक रहे थे, अभी दोनों साथ साथ भटक रहे। पहले भिखारी थे तो 2 भिखारी मिल गए, अभी साथ साथ भीख मांग रहे हैं, क्योंकि संपन्न तो कोई भी नहीं है। इसी को समाज ने विवाह कहा है। है दोनों ही सम्राट तो कोई नहीं है दोनों में से, दोनों भी खाली है। और वो सोचता है इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और वो सोचती है कि इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, पर मिलता दोनों को कुछ भी नहीं। पर ये पता तब चलता है जब मिल गए और सारा पुरुषार्थ मिलन के लिए है, और बाद में पता चलता है जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, कटोरा उसका भी खाली है और इसका भी खाली है, और साथ साथ अभी कटोरा लेके घूम रहे हैं, चाहे धार्मिक संस्थाओं में, चाहे साधु संतों के पास, चाहे और कहीं। तो संसार की दृष्टि से भी इसे अच्छा समझा जाता है। बाबा ने कहा झंझटों से मुक्त शरीर के साथ साथ उधर आत्मा के साथ साथ शरीर के भी कर्म बंधन चालू हो जाते, शरीर के भी हिसाब चालू हो जाते। उसके बाद में कुमार अर्थात कंबाइंड बाप के साथ कंबाइंड। उधर बच्चा लेट आया, बच्चे को स्कूल में पहुंचाना है, बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है उधर। हाँ, तो यहां पे स्वतंत्र नहीं रह पाते, निर्बंधन नहीं रह पाते, बोझ हो जाता है, बाप के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। बाप के साथ कंबाइंड रहना, उधर किसी बंधन में, एक बंधन में फंसना आधार अनेक बंधन निर्माण कर लेना। तो कुमार अर्थात कंबाइंड, बाबा के साथ कंबाइंड, खाओ पियो मौज करो, जो बनाना चाहो बनाओ और खाओ, मस्ती से खाओ, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, किसी पर निर्भर नहीं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं, इमोशनल फ्रीडम है। एक है इमोशनल स्लेवरी, हमारे इमोशंस दूसरा व्यक्ति कंट्रोल करता है, रिमोट उसके पास है, उधर से बटन दबाता है सुख तो हम खुश, उधर से बटन दबाता है आंसू तो इधर आंसू, उधर से बटन दबाता है उदास तो हम उदास, सारा कुछ कंट्रोल उधर उसके हाथ में देके रखा है। वो कहता है रिमोट कंट्रोल तुम ले लो, परंतु हम कहते नहीं तुम ही रखो, प्यार इतना है, हमने रखा है उसके जेब में, वो कहता है ले लो, हम कहते हैं नहीं अच्छा लगता है, तुम अपने ही हाथ में रखो। उसका तो दोनों के एक दूसरे के हाथ में है, दबाते रहते हैं उधर से और दुखी होते रहते हैं जीवन भर। कुमार अर्थात बाबा से कंबाइंड। उसके बाद कुमार अर्थात किसी को ज्ञानी साथी तो नहीं चाहिए, ज्ञानी साथी कोई अच्छी सी धारणा युक्त बहन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जीवन का ये यात्रा सुखद हो जाए। या कुमारियों के लिए कोई कोई माता पिता ढूंढते अपने कुमारियों के लिए, अच्छा पक्का ब्रह्मा कुमार धारणा वाला चाहिए, पर ऐसे वैसे नहीं चलेगा, पक्का बीके मैट्रिमोनियल साइट ढूंढो, उसमें कुछ मिलता है तो अवेलेबल कुमार, पर पक्का चाहिए। तो किसी कन्या का कल्याण करना अर्थात क्या कहा बाबा ने, अकल्याण। संकल्प तो नहीं आता है कि किसी को साथ लेके चलूं, किसी का कल्याण करूं, बेचारी बंधन में है क्या करे, उसका कुछ तो करना चाहिए ना, मदद तो करनी चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, धर्म भ्राता हूं। अकल्याण, ये सब माया जाल है, जब अकेला ही नहीं चल पाता है लेके क्या चलेगा किसी को, वो जो है ना पैरों में कौन सा खेल है, वो बोरी में पैर डालते हैं, एक वो डालता है क्या कहते हैं सैक रेस, और बांधते और भागो और गिरो, हाँ थ्री लेग। तो किसी का कल्याण करने का संकल्प नहीं करना है, ये कल्याण नहीं अकल्याण है। किसी के मन में मोह उत्पन्न कर देना, किसी के मन में काम वासना उत्पन्न कर देना, किसी के मन में देहभान उत्पन्न करना, उसके सौंदर्य की तारीफ कर करके उसे ये दिखा देना, उसे उसमें ये भान उत्पन्न कर देना कि मैं स्त्री हूं, अब तक आत्मा स्वरूप में चल रही थी बाबा के ज्ञान में चल रही थी, किसी कुमार के संपर्क में आई और उसे यह पता चला कि मैं बहुत सुंदर हूं, देवभान उत्पन्न किया। ये भी उसका पतन है। एक है खुद ही गड्ढे में गिरना और दूसरा है दूसरे का हाथ पकड़ के गिरना। खुद तो नरक में जा ही रहे, दूसरों को भी नरक के का भागी बना रहे, तो ये बोझ है एक। तो किसी भी कन्या का कल्याण करने की का संकल्प नहीं करो, वो अपना कल्याण खुद करेगी, वो इतनी कमजोर निर्बल नहीं है जो किसी तुम्हारी आवश्यकता है उसको। तुम ठेकेदार नहीं, ठेकेदार मैं हूं, बाबा के महावाक्य। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कल्याण नाम मात्र है, वासना तृप्ति के नाम को की चाह को ऊपर से कल्याण का नाम देना आत्मवंचना है, सेल्फ डिसेप्शन। इसलिए किसी का कल्याण करने का संकल्प चालू है यदि मन में, तो क्या करना है, स्टॉप कर दो उसको अभी के अभी। किसी का कल्याण करने की आवश्यकता नहीं। कोई अच्छा लग गया, साथ में ही मुरली सुनने जाना और साथ में ही योग करना और साथ में ही भोजन करना और साथ में ढेर सारी बातें करना जीवन की पतन है, बहुत ज्यादा समीप। हमें यह पता इस समय वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, 3 बजे है वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, इतनी एक दूसरे के प्रति जानकारी है। कैसे प्राप्त की, फोन से, बातों से, मैसेजेस से, बात तो कर रहे पर चेहरा दिखना चाहिए, वीडियो कॉलिंग। भगवान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। एक समय था यज्ञ में ये सब बातों के लिए कितना स्ट्रिक्ट था, किसी बहन के बेड पर भी कोई भाई नॉट अलाउड टू सिट, किसी भाई के कमरे में कोई बहन जाना, किसी बहन के कमरे में कोई भाई जाना नॉट अलाउड। हमारी ओपीडी में साध्विया आती है, जैन साध्विया, दिलवाड़ा में आती रहती है, उनके बड़ी साध्वी, बड़े आचार्य, पैदल नीचे से वो पीछे के रास्ते से अनाथ रखे, तो जब उनको कोई भी शारीरिक तकलीफ होती है तो हमारे पास आती है। वो बैठती नहीं है वहां पर, पेशेंट का जो चेयर है कुर्सी पर, अगर वहां पे कोई पुरुष बैठा है थोड़ी देर पहले तो वो नहीं खड़ी रहेगी, बैठेगी नहीं, उनको बहुत ज्यादा ख्याल है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, किसी भी विकारी के स्पर्श की हुई वस्तु को वो टच नहीं करती है, खड़ी रहेगी वानी बैठेगी, उनके अपने नियम है प्यूरिटी के। और सबसे पहले तो कमी आती है, वो बीमारी हो गई तो सहन करना, ये उनका नियम है, सहन करते रहो। तो किसी का भी इस तरह से कल्याण करने का संकल्प नहीं करना है। और कई सारे कुमार होंगे विश्व भर में जो अभी योजनाएं बना रहे हैं कि कोई मिल जाए, और किसी किसी ने पसंद भी कर चुके हैं, अब बस बात करने की देरी है। तो इसको माया समझ लेना है कि ये बंधन है, एक बार गए फिर निकलना बहुत मुश्किल है। इसके पहले भी सुनाया था, एक पति पत्नी को इनाम मिलता है, बूढ़े हो जाते हैं, इनाम कि इनके जीवन में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, सबसे सुखी दाम्पत्य। तो पति को कहा जाता है आप कुछ अपने अनुभव शेयर करो, कैसे हुआ ये कितना आश्चर्य है, एक भी झगड़ा नहीं। वो कहता है जब हमारी नई नई शादी हुई और हम घूमने गए तो वहां पे अश्वारोहण, हॉर्स राइडिंग, तो मेरी पत्नी घोड़े पर बैठी और घोड़े ने उसे गिरा दिया, और फिर उसने कहा कि देख लेना ये पहली बार है। फिर से बैठी, फिर से घोड़े ने गिराया, तो उसने कहा घोड़े से, यह दूसरी बार है, अब ध्यान रखना। तीसरी बार बैठी, तीसरी बार फिर गिरा है, तो उसने अपनी हैंडबैग खोली और बंदूक पिस्तौल निकाली और घोड़े को वहीं शूट कर दिया। पत्नी ने, पति आया भाग के, अरे ये तुमने क्या किया? उसने कहा ये पहली बार है। और उसके बाद कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। हजारों जोक संसार में बना के रखे, क्यों बनाए? ये भी एक सोचने का विचार है, क्यों बनाए? कुछ तो होगा। बिना चिंगारी के धुआं तो नहीं निकलेगा, कुछ तो होगा। चाहे मानो ये सब बहुत सारी चीजें झूठी होगी, परंतु कुछ तो है। तो किसी कुमारी का कल्याण करने का संकल्प नहीं करना है। तो ये एक बात कही। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, कुमार अर्थात पक्का, कच्चा नहीं। कच्चा अर्थात ना इधर के ना उधर के, कुमार अर्थात पक्का, कुमार अर्थात जिसने अपना भविष्य और वर्तमान दोनों को पक्का श्रेष्ठ बनाया है, यह है पक्का कुमार। पक्का कुमार अर्थात, जैसे इसके पहले भी बताया था, एक माता जी ज्ञान में चलने वाली, बहुत पक्की, और फिर उसी ने अपने बेटे को ज्ञान में लाया, और फिर वो कुमार, वो भी इतना पक्का बन गया कि बस, पर अब माता जी को बहू चाहिए, अब क्या करे? माता जी तो उसी ने ज्ञान में लाया था, पर बहू तो चाहिए ना घर पे एक। तो उसने बेटे को कहा कि तुम करो, उसने कहा नहीं, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, कुमार हूं, बिल्कुल नहीं। उसने फिर अपने सारे आंसू बिसू और वो सब करके सब कुछ लगा के उसको विवश कर दिया और उसने शादी की। और पत्नी आई एकदम खतरनाक और तेज तर्राक और रोज झगड़े, रानी लक्ष्मी। और रोज झगड़े और रोज झगड़े और दोनों परेशान। कुमार ने कहा देखा, तुमने बोला था शादी करो? तो माता जी ने कहा बोला तो मैंने था, की तो तुमने ना, मेरा क्या दोष है इसमें? तुमने की बढ़ता बाबा कहते हैं ना, तो तुम्हारी इच्छा तो होगी ना। तो फंस गया ना वो। तो कुमार अर्थात पक्का, पक्का अर्थात बाप के बाप का बन के रहना। तो पक्का बन के रहना। तो ये था सेकंड ग्रुप, और तीन ग्रुप और है। तो अपनी धारणाओं को पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मार्ग पे गिरेंगे, जो भी करेंगे चलेगा, पर उधर जाना ही नहीं है। इधर जो भी मुसीबतें आएगी, जो भी संकट आएगा, जो भी कठिनाई आएगी, सब कुछ सहन करेंगे, क्योंकि फिर भी भगवान साथ है। वहां पे तो मुश्किल ही मुश्किल, वहां पे तो गिरना ही गिरना है, गिरना ही गिरना है, गिरना ही गिरना है, क्योंकि वहां बंधन है, किसी व्यक्ति का बंधन है, किसी को साथ में लेकर चलना है, वो बंधन है एक। हाँ, वो पहले से अगर हो गया है, बाबा ने ये भी कहा अज्ञान काल में भी अज्ञानवश वो लोग कर रहे हैं, तुम ज्ञानी हो, तुम्हारा पश्चाताप का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पता था नहीं जाना है फिर भी गए, तो बहुत ज्यादा होगा। जानने के बाद सब कुछ ये कर लिया तो ये संसार के सारे रीति रस्म रिवाज विवाह ये सारे बंधन में बांधने वाले। कुमार अर्थात स्वतंत्र, कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात झंझटों से मुक्त, कुमार अर्थात बाप के बने हुए, कुमार अर्थात श्रेष्ठ, कुमार अर्थात शक्तिशाली, कुमार अर्थात स्वतंत्र, बिल्कुल किसी पर भी अवलंबित नहीं, कुमार अर्थात पक्का, कुमार अर्थात कंबाइंड, कुमार अर्थात किसी के कल्याण करने का संकल्प नहीं करना, कुमार अर्थात किसी के एकदम निकट समीप जाना नहीं, कुमार अर्थात किसी दूसरी बहन में, कुमारी में देहभान उत्पन्न करना नहीं, वो बहुत बड़ा बोझ है। कुमार अर्थात किसी और को अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने देना, क्योंकि ऐसे कुछ गुण होंगे, कुछ क्षमताएं होगी, सेवा की कुछ कलाएं होगी, आत्माएं अपने आप आकर्षित होगी, परंतु इन सब से दूर रखना, उनके लिए कभी कभी उनका दिल भी दुखाना पड़ेगा, चलेगा। वो सोचेंगे कैसा ये भाई है, निष्ठुर, कठोर, हृदय नहीं है इसके पास, तो हार्टलेस, पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि नहीं, पत्थर है तो पारस बुद्धि, इसलिए तो आकर्षित हो रहे हैं, परंतु दिल पत्थर है इसका, सोचा क्या था, पर चलेगा। दुखी होने दो उनको, क्योंकि वो यदि फंस गए, हम तो ऊपर निकल जाएंगे पर वो फंसे रहेंगे, क्योंकि उन आत्माओं में इतनी पावर नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में फंसने के बाद निकल जाए वहां से, इतना ज्ञान भी नहीं है। और फंसने के बाद निकले कैसा है इसका, कहां ढूंढेंगे मुरली, और किस मुरली में ये पॉइंट्स आई है, और किस तरह से वैराग उत्पन्न करे, क्योंकि जिससे प्यार हो गया फिर उससे घृणा कैसे करे, उसके तो अवगुण ही नहीं दिखाई देते, वही चाहिए फिर, उसका सब कुछ अच्छा लगता है, उसकी आवाज अच्छी लगती है, उसका हंसना अच्छा लगता है, उसकी सेवाएं अच्छी लगती है, उसका बोलना अच्छा लगता है, उसका साथ अच्छा लगता है, और फिर कोई करे उससे दूर रहो तो फिर बेचैनी। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द ना जाने कोई। तो वो अवस्था हमारी वजह से किसी और की ना आ जाए। कुमारों से बात कर रहे बाबा, तो कुमार अर्थात अलर्ट, सावधान, और कुमार अर्थात जितने ब्रह्मचारी संसार में हुए हैं उनके जीवन का अध्ययन करते रहना। बड़े बड़े वैरागी सन्यासी हुए हैं उनके जीवन का निरंतर अध्ययन करते रहना। स्वामी दयानंद सरस्वती भाग गए थे, शादी थी तो, विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे सन्यासी हुए हैं, शिवानंद, योगानंद, ऐसे संसार में बहुत सारे तपस्वी हुए हैं कि जो ये सब झंझट में कभी गए ही नहीं। आई हेट मैरिजेस, स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, आई हेट मैरिजेस, मुझे घृणा है ये सबसे, इन बंधनों से, इसमें जाना ही नहीं है, ये सब जंजाल है संसार के। वैराग, पर वैराग मन में चाहिए, ये कुमारों से बात चल रही है, क्योंकि आज और वर्तमान समय मीडिया और डिजिटल इतना बढ़ गया है कि लोगों की दोस्ती फेसबुक और व्हाट्सएप से हो जाती है, चेहरा तो देखा ही नहीं है, उसी से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि फिर सोचते तुम ही मेरे जीवन साथी हो, बस बाबा और आप बस दो ही हो, तीसरा ना कोई, हम साथ साथ चलेंगे और बाबा को बीच में रखेंगे, पर वो बाबा कब गुम हो जाता है बीच से, ये भी उनको पता नहीं चलता है, वो तो चला जाता है कहीं, और बस ये दो ही रह जाते हैं, फिर हाथ में कटोरा लिए, सुख दे दो, शांति दे दो, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, ऐसे प्रश्न पूछते हैं फिर, हम दोनों भी चलते हैं ज्ञान में, अभी भाई जी ये बताओ तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, या ऐसे प्रश्न नहीं होते उनके, पाप समान कैसे बनने, उसकी कोई युक्ति हो तो बता दो। छल, छल कर रहे स्वयं के साथ, पहले स्वीकार करो कि पतन हुआ है, पहले स्वीकार करो कि दुर्गति हुई है, पहले स्वीकार करो गिर गए हैं, अब पतन का, उत्थान का मार्ग चालू होगा। जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कल और आगे का जो ग्रुप है उससे बात करेंगे। ओम शांति।
जलते हुए अंगारों में तू ही शीतल जल बरसाना है, जलते हुए अंगारों में तू ही शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आंखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। Thank you. क्या क्या कह रहा है, धरती की आंख का पानी देख जरा क्या कह रहा है, धरती की आंख का पानी आह भरे गीत गाती है, शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी। आंसू भरी इन आंखों में तुम्हें खुशियां भरते जाना है, जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है।